हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करिश्मा जी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थीं और अमन के आने का इंतज़ार कर रही थीं। जल्दी ही अमन करिश्मा जी के सामने खड़ा हुआ। अपनी माँ को इस तरह बेचैन और परेशान देखकर अमन हैरान रह गया। क्या हुआ मॉम, क्या हुआ है आपको? अभी तो आप अच्छे खासे ठीक थी नीचे, फिर अचानक से आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? और आपने मुझे इस तरह से कमरे में क्यों बुलाया? हम सब तो आज गार्डन में बैठने वाले थे ना, फिर इस तरह से बुलाने का क्या मतलब है? अमन ने आते ही अपने कई सवाल अपनी माँ से पूछ डाले। उसकी माँ हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। बेटा, तू जानता है, जब से तेरे अंदर मान की रूह शामिल हुई है तो आधा मान बन चुका है और आधा अमन, बिल्कुल मान की तरह, एकदम से सवाल पर सवाल। अपनी माँ की बात सुनकर अमन इधर उधर देखने लगा और हल्का हल्का अपना सिर खुजाने लगा, मानो वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया हो। फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोला, सॉरी मॉम, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं तो केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। आपने इस तरह से अचानक मुझे बुलाया तो बस मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तब करिश्मा जी अमन की बात सुनकर उसे कंधों से पकड़कर अपने पास बेड पर बिठाया और बोली, बेटा, मुझे नहीं पता मुझे तुझसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अमन और ज्यादा परेशान हो गया। हाँ हाँ मॉम, बताइए क्या बात है और आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? तब करिश्मा जी बोली, बेटा, देख, तू अच्छी तरह से जानता है इस वक्त तेरे आसपास क्या चल रहा है, कितना आंधी तूफान तेरी जिंदगी में आया हुआ है। कहीं तेरे कलीग मर रहे हैं तो कहीं कुछ और हो रहा है। बेटा, उसी की रिगार्डिंग में तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। तब अमन अपनी माँ को शांत देखकर बोला, मॉम, आप कुछ बोलिए तो सही, आखिर बात क्या है? अगर आप तब तक मुझे नहीं बताएंगी कि मसला क्या है, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, प्लीज बोलो। अमन की बात सुनकर करिश्मा जी को भी थोड़ी हिम्मत मिली। बेटा, देख, तू अच्छी तरह से जानता है तारा के पेट में पल रहा तेरा अंश कितना ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पीछे काली शक्तियाँ हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, और तू उनका नमूना भी अपने आसपास देख चुका है, क्योंकि तेरे कलीग की इतनी खतरनाक मौत तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो जरूर किसी काली शक्ति ने की है। और बेटा, हमें ये भी नहीं पता है कि ये काली शक्तियाँ आखिर कौन हैं, कहाँ रहती हैं और किस तरह से अटैक करती हैं। जब जब इन काली शक्तियों से हमारा सामना हुआ है, वो केवल एक धुएं के रूप में हुआ है, एक काली परछाई के रूप में हुआ है, कभी भी हमने इनका इंसानी रूप नहीं देखा है। लेकिन बेटा, अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कोई एक काली शक्ति हमारे घर में ही मौजूद है। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या कह रही है। उसकी माँ कह रही थी कि एक काली शक्ति उसके घर में मौजूद है। भला किसी काली शक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो जिन महाराज के घर में मौजूद हो? क्या उसे अपनी जान की इतनी सी भी फिक्र नहीं है? अमन की बात सुनकर करिश्मा जी बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तुम अभी कोई फैसला कायम मत करो और पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मेरा इरादा भी तुझे परेशान करने का या कुछ वही कहने का नहीं है, और मैं जो तुझे कहने जा रही हूँ तो हो सकता है तो सुनकर मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं एक बात कान खोल कर सुन लेना बेटा, मैं तेरा सिर्फ अच्छा ही चाहती हूँ, और एक माँ के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो अपने बच्चों का अच्छे के अलावा बुरे के बारे में भी सोच सकती है, और मेरी तो पूरी जिंदगी मेरी सांसें तुम हो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, तुम और तुमसे जुड़े रिश्ते जैसे कि तारा और होने वाला वंशज। तब अमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम, आप परेशान क्यों हो रही हैं और बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हैं? आप मुझे सीधे सीधे बताइए क्या बात है, और मैं वादा करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपकी बात नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? अमन की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर अब करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, बेटा, मेरा तुझे कहने का मतलब ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काली शक्ति हमारे घर में मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा है। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसका हैरानी से बुरा हाल हो गया। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? भला ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है मॉम, विक्रांत अभी अभी विदेश से आया है। भला उसके अंदर काली शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं? ये आप क्या कह रही हैं? आपको क्या हो गया है? आप विक्रांत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप बचपन से विक्रांत को जानती हैं, उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रही हैं? करिश्मा जी को पहले से ही पता था कि अमन उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। तब करिश्मा जी बोली, बेटा मैं जानती थी तो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसीलिए जो मुझे लगा वो बात मैं तेरे कानों में डाल दी है। मुझे लगता है कि विक्रांत के अंदर जरूर काली शक्ति है। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू खुद इस बात को महसूस कर। बस मेरा तुझे यहाँ बुलाने का मकसद केवल यही था ताकि तू इस बात को खुद पर खुद महसूस कर ले। करिश्मा जी की बात सुनकर अमन अब कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा मॉम, ठीक है, अब अगर आप कहती हैं तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए क्योंकि विक्रांत और तारा हमारा गार्डन में इंतजार कर रहे होंगे। अमन की बात सुनकर करिश्मा जी ने हाँ में सर हिला दिया और वो जल्दी ही गार्डन के लिए निकल गईं। जैसे ही मुरझाई हुई फूल पत्तियों की ओर तारा ने देखा और विक्रांत को बताया, तब विक्रांत ने कहा, लेकिन कहाँ, मुझे तो कोई भी फूल पत्तियाँ मुरझाई हुई नजर नहीं आ रही हैं। जैसे ही तारा ने ये सुना वो हैरान हो गई। तारा का हैरानी से बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि अचानक से कैसे बगीचे के सारे पेड़ पौधे सब मुरझा सकते थे। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। वहीं विक्रांत इस बात को लेकर खुश था कि कम से कम पेड़ पौधे मुरझाने पर तारा ने उसकी तरफ तो देखा। विक्रांत की आंखों से उसके दीवानगी, उसका जुनून साफ झलकता था, लेकिन किसी ने उसे गौर ही नहीं किया था। अब विक्रांत को तारा का पेड़ पौधे भी देखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने सभी पेड़ पौधों को एकदम से सुखाकर एकदम बंजर बना दिया था। तारा का हैरानी से बहुत बुरा हाल था, इसीलिए वो उठी और उठकर एक पौधे की ओर गई। धीरे धीरे उसने वहां पर मुरझाए हुए फूल को देखा जो अभी थोड़ी देर पहले खिला हुआ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तब तारा ने कुछ पढ़कर उस फूल पर फूंका। तारा ने ये सब कुछ इस तरह से किया था कि वो विक्रांत की नज़रों में नहीं आ पाई थी। जैसे ही तारा ने उस फूल पर एक मंत्र पढ़कर फूंका, वो फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया और एकदम से खिल उठा। तब तारा ने उसे फूल को देखकर बोला, हे खूबसूरत फूल, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, आखिरकार इस पूरे बगीचे के पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ क्यों मुरझा गईं? अभी तो सब कुछ खिला हुआ था, फिर अचानक से आप लोगों के साथ क्या हुआ? तारा परी की आवाज़ सुनकर वो फूल बोल पड़ा, हे रानी परी, आपने मेरे अंदर जान डाल दी है, तो मैं अपनी सारी बातें आपके साथ जरूर करूंगा। इस पूरे बगीचे के पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ इसलिए मुरझा गईं क्योंकि आप इनकी ओर देख रही थीं। जैसे ही तारा ने ये सुना वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और आंखों में आंसू लाकर बोली, तो क्या मेरे देखने से फूल पेड़ पौधों को तकलीफ हुई, इस वजह से वो मुरझा गए?
तब वो फूल बोला, नहीं 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 रानी परी, आप गलत समझ रही हैं। आप जब फूल पेड़ पौधे को बड़े ही प्यारी नज़रों से देख रही थीं, तो सभी पेड़ पौधे फूल पत्तियों को ठंडक मिल रही थी, लेकिन किसी को आपका इतनी प्यार से सब पेड़ पौधों फूल पत्तियों को देखना पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने हम सबके ऊपर मुरझाने वाला और हमारी खूबसूरती को बदसूरती में बदलने वाला मंत्र फूंक दिया था, जिसके चलते इस पूरे बगीचे का एक एक पेड़ पौधा फूल पत्तियाँ मुरझा गई थीं। जैसे ही फूल ने अपना बयान दिया, तारा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो समझ गई थी कि ये सब क्यों और कैसे हुआ है, क्योंकि जरूर वो राक्षस का अंश उसके आसपास होगा और उसी ने ये सब कुछ किया है। तारा को समझने में देर नहीं लगी और तभी तारा ने कुछ और मंत्र पढ़कर उन फूलों की ओर फूंका और देखते ही देखते जितने भी पेड़ पौधे बगीचे के मुरझाए हुए थे वो सब एक बार फिर से खिल उठे और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। तारा सब कुछ फिर से खूबसूरत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोलते हुए फूल से बोली, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितनी भी काली शक्ति चाहे, तुम पर अपना जादू आजमाना चाहे और तुम्हें मुरझाना चाहे और खूबसूरत से बदसूरत बनाना चाहे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग हमेशा के लिए इसी तरह से खूबसूरत रहोगे। तारा की बात सुनकर वो फूल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत तो हो ही गया था, साथ ही साथ अब उसके अंदर जान थी और वो अब बातें भी कर सकता था। तारा ने कहा, मैंने तुम्हें बोलने की शक्ति और जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है वो शक्ति कभी भी नहीं छीनूंगी और वो तुम्हारे पास ही रहेगी और केवल तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस राज को किसी को भी नहीं बताओगे। जैसे ही फूल ने ये सुना उसने खुशी से अपनी गर्दन तारापरी के सामने झुका दी और झुकता हुआ फूल ऐसा लग रहा था मानो तारापरी को प्रणाम कर रहा हो। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तारा उसके इस अंदाज से मुस्कुरा उठी और वापस से मुस्कुराती हुई बगीचे के बीचों बीच जहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं वहाँ जाने लगी।